नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू। मकान सूचीकरण और आवास गणना का यह चरण इस वर्ष सितंबर तक होगा पूरा। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देश में आज से कई नियमों में बदलाव। नए आयकर अधिनियम और डिजिटल भुगतान के लिए दो चरणों में सत्यापन के संशोधित नियम लागू। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को आज से दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी। और राजगीर में आज से राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमें होंगी शामिल। अब समाचार विस्तार से। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या प्रक्रिया जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू होगा। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना तथा दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। एक रिपोर्ट।
पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह स्वगणना आज से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण में सभी भवनों और संरचनाओं की सूची तैयार की जाएगी तथा आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। भवनों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और प्रत्येक संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। देश भर में इस कार्य के लिए 30 लाख से अधिक गणना कर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही नागरिक 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से अधिक राशि को मंजूरी दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डिजिटल जनगणना के फायदों के बारे में बताया है।
डिजिटल में सबसे पहला फायदा तो यह है कि आंकड़े ज्यादा शुद्ध तरीके से संग्रहित होंगे। जो फिजिकल आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको डिजिटाइज करने में त्रुटियों की संभावना रहती है। जनगणना के आंकड़े हैं उनका प्रकाशन शीघ्रता से संपन्न हो सकेगा।
वित्तीय वर्ष 2026-27 की आज से शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही प्रमुख वित्तीय नियमों में बदलाव सहित कई सुधार लागू हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज नए आयकर अधिनियम 2025 ने 6 दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ले लिया है। इसे पुराने प्रावधानों को हटाकर, जटिल नियमों को सुव्यवस्थित करके और करदाताओं के लिए अनुपालन को अधिक सरल बनाकर प्रणाली को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आज से देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 कारक प्रमाणीकरण के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास का संशोधित शुल्क भी आज से लागू होगा। इसके साथ ही अस्थायी खाता संख्या, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या उसे अपडेट करने के संशोधित नियम भी आज से प्रभावी होंगे। अनुपम मिश्र के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
देश भर में प्राकृतिक गैस पीएनजी के विस्तार में तेजी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान के दूसरे चरण को इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार मार्च माह के दौरान घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस और कैंटीन सहित 31 लाख से अधिक कनेक्शनों को गैस युक्त किया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी का पर्याप्त भंडार है। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को आज से दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
नए नियम के अनुसार रात के 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली खपत पर कंपनी की ओर से निर्धारित दर के अनुसार ही बिजली बिल देना होगा। वहीं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली खपत करने पर लोगों को मात्र 20% कम बिल का भुगतान करना होगा, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक निर्धारित दर से 20% अधिक बिल देना होगा। इस फैसले से 87 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। स्मार्ट मीटर नहीं होने की स्थिति में जिन उपभोक्ताओं का लोड 10 किलो वाट से अधिक होगा उनके लिए भी यह व्यवस्था रहेगी। पिछले वर्ष केवल औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी यह व्यवस्था थी। समाचार कक्ष से अमरनाथ प्रसाद।
प्रदेश में आज से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों के नो मैंस लैंड क्षेत्र में भी प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नालंदा जिले के मगड़ा शीतला मंदिर भगदड़ हादसे के मामले में थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि दीपनगर थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था की कमियां सामने आई हैं।
मंदिर का जो व्यवस्था है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो एग्जिट है, एंट्री है, ये सब में भी काफी कुछ करने की जरूरत है कि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ कभी कभी होती है और 20-25 हजार की भीड़ बताई जा रही है अभी, तो ये भीड़ के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए भी निश्चित रूप से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए थी, भीड़ को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो वो नहीं थी, त्रुटि है, इसके लिए SHO को सस्पेंड किया गया है।
कल हुए इस हादसे में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व से संचालित नर्सिंग संस्थान और नए आवेदन करने वाले संस्थान शामिल होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के नर्सिंग संस्थानों की सभी जानकारी उपलब्ध होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत नेपाल को द्विपक्षीय सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा दाता देश बनकर उभरा है। इस अवधि में भारत ने नेपाल को करीब $108 मिलियन की सहायता राशि भेजी है। नेपाल के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विकास सहयोग रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन $84 मिलियन की सहायता राशि के साथ इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने 6 अप्रैल को पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली, नवादा, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले में कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश हुई है। इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। इससे फसलों को काफी क्षति पहुंची है। इस बीच प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश स्थानों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इस अवधि में रोहतास का डेहरी 37.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजगीर स्थित खेल अकादमी में आज से 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। उद्घाटन मुकाबला आज शाम मेजबान बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि 12 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमें भाग ले रही हैं। इधर लखीसराय में आयोजित बिहार सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन मुकाबले में समस्तीपुर ने औरंगाबाद को 2-1 से पराजित कर दिया। पटना में खेले जा रहे रणधीर वर्मा एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मधेपुरा और शिवहर की टीमों ने जीत दर्ज की है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए एक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से पराजित कर दिया। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन बनाए। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रशासनिक और शैक्षणिक भवनों के उद्घाटन कार्यक्रम में हंगामा करने वाले अलग अलग छात्र संघ के 6 नेताओं सहित 35 लोगों पर पीरबहोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा मामले में यह कार्रवाई की गई है। भाजपा की प्रदेश इकाई राज्य के 1420 मंडलों में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि इस दौरान सदस्यों को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर वैशाली के अभिषेक पुष्करणी में 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का कल भव्य शुभारंभ हुआ। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन और अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। अररिया पुलिस ने चेन स्नेचिंग के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अभियान चलाकर फारबिसगंज से अंतर्राज्यीय कोढ़ा गैंग के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अलग अलग आपराधिक मामलों में वांछित 167 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नालंदा के मगड़ा मेले में भगदड़, 8 मरे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख, मृतकों के आश्रितों को मिलेंगे 8-8 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ज्ञान संवाद और मानवता की सेवा ही हमारी सभ्यता की पहचान। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार में पोल्ट्री क्रांति, अब अंडा मांस के लिए नहीं रहना होगा दूसरे राज्यों पर निर्भर, बिहार बनेगा पूर्वी भारत का पोल्ट्री हब। प्रभात खबर ने नए वित्त वर्ष से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आज से नया इनकम टैक्स कानून, टोल पर अब कैश बंद। राष्ट्रीय सागर लिखता है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का आज से बदल गया नियम। अखबार लिखता है, घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग देना होगा अनिवार्य। आज अखबार का शीर्षक है, ईरान की चेतावनी, अमेरिकी कंपनियों पर करेंगे हमले, निशाने पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और टेस्ला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू। मकान सूचीकरण और आवास गणना का यह चरण इस वर्ष सितंबर तक होगा पूरा। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ देश में आज से कई नियमों में बदलाव। नए आयकर अधिनियम और डिजिटल भुगतान के लिए 2 चरणों में सत्यापन के संशोधित नियम लागू। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को आज से दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी। और राजगीर में आज से राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 टीमें होंगी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।